ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल परीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
We have circulated the order of the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, additional secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, DG DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। मृतकों की पहचान करने और पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। इस बीच गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना के मृतकों में से 19 लोगों के शवों की डीएनए जांच के जरिए पहचान कर ली गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री ने कहा कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की टीम और अधिक डीएनए नमूनों का मिलान करने के लिए रात भर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल पेरिस में रणनीतिक समुदाय के साथ वर्तमान में चल रहे वैश्विक पुनः संतुलन और भारत यूरोप साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने पेरिस स्थित फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा किया और वहां संग्रहित भारतीय शास्त्रीय पांडुलिपियों और ग्रंथों को देखा। उन्होंने पुस्तकालय के अध्यक्ष के साथ विरासत संरक्षण पर अधिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। जयशंकर ने कल अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बारोट के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्री 11 से 14 जून तक फ्रांस के दौरे पर थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कूटनीतिक पहल के तहत 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को सर्वसम्मति से प्रतिध्वनित किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इस कूटनीतिक पहल के माध्यम से भारत आतंकवाद और अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने के अपने अधिकारों को वैश्विक मंचों पर व्यक्त करने में सक्षम हुआ है।
हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के निमंत्रण पर साइप्रस पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर कठोर हमले जारी रखने का प्रण लिया है और कहा कि इसराइल ईरानी शासन के हर स्थल और लक्ष्य पर हमला करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अभियान का दोहरा लक्ष्य है, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल करना और उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकना। बेंगलुरु हादसे से सबक लेते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल अपनी 28वीं शीर्ष परिषद की बैठक में जीत के जश्न के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने हेतु एक समिति गठित की। BCCI सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता वाली समिति बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। इस दुखद घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। साथ ही बैठक में अगले वर्ष भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे और T20 सीरीज के लिए आयोजन स्थलों को भी मंजूरी दी गई। ये सीरीज 11 से 31 जनवरी तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।